तो बस शाम हो गई, बैठो, हमने कहा ही था उसी समय कि तेज चलोगे तो शाम हो जाएगी और पहुंच नहीं पाओगे। बोले मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बोले पहली चीज, जब तुमने मेरे से पूछा कि कितनी दूर है शहर और कितनी देर लगेगी, तो मैं कैसे बता दूं? मैं पहले तुम्हारी चाल तो देखूं कि किस चाल से तुम चल रहे हो। सो जैसे ही 25-50 कदम तुम चले, मैंने बता दिया कि 2 घंटे लगेंगे तुम्हें, इसी चाल से चलोगे, और अगर तेज चले तो बोल्डर वाला स्थान है पूरा, सो बोल्डर में किसी भी पत्थर के ऊपर से स्लिप होकर के गिरोगे, सो पैर टूटेगा और बैठे रहोगे सामने। इतना सीधा सा बताया था मैंने, कुछ गड़बड़ तो की है नहीं। भैया अपने काम की कितनी सी चीज है, हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन हमारी चाल तो उल्टी है, तो कैसे बनेगा जीवन अच्छा? हम दूसरे के बारे में तो अशुभ विचार करें और दूसरे से अपेक्षा रखें कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे। मैं दूसरे के रास्ते में कांटे बिखेरूं और अपेक्षा रखूं कि वो फूल बिछाए मेरे कांटे में। मैं दूसरे को अपशब्द कहूं और अपने जीवन के लिए वो प्रेम से बोले, ये अपेक्षा रखूं? नहीं भैया, कैसे संभव है? मेरा अपना आचरण, मेरी अपनी चाल, जहां जैसा मैं चल रहा हूं वहां पहुंचाएगी। अकेले कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं नदी किनारे पहुंच जाऊं और कदम बढ़ाए वो बाजार के किनारे, तो कितना भी सोचता रहे लेकिन पहुंचेगा वो बाजार में, नदी किनारे नहीं पहुंचेगा। अकेले सोचने मात्र से कहीं नहीं पहुंचते, आपकी चाल कैसी है इससे निर्धारित होगा कि आप कहां पहुंचेंगे। और पांचवी चीज है, आपके भीतर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये सब आप कर पाएंगे कि नहीं। हम सब के भीतर उसी चीज की कमी हो जाती, आत्मविश्वास नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे भीतर आत्मविश्वास आवे इसके लिए हमने अपने आप को सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में समर्पित किया ही नहीं। जो व्यक्ति जितना समर्पित है सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, वो उतना कॉन्फिडेंट है अपनी जीवन की सब विपत्तियों से आसानी से निकल जाता है, पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे साथ तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का आशीर्वाद है। ऐसा विश्वास लेकर के वो संसार की विपत्तियों के बीच भी आसानी से निकल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, हमें कैसा समर्पण सच्चे देवगुरु शास्त्र के साथ करके और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। लोग बार बार पूछते हैं, बच्चे तो विशेष रूप से, कि हाउ कैन इंप्रूव अवर विल पावर, हम कैसे अपना विल पावर बढ़ाएं? काहे के लिए? अच्छे से पढ़ सकें और अच्छा करियर बना सकें। वाह भैया, इसके लिए तो आपको आत्मविश्वास चाहिए। मैं अपना कल्याण कर सकूं, इसके लिए कोई विश्वास आपके भीतर है? वो विश्वास तो जागृत होगा सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा से, और जब तक सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति उनके स्वरूप की जानकारी नहीं होगी कि वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके प्रति अपने भीतर समर्पण का भाव उत्पन्न नहीं होगा, और समर्पण के भाव के बिना अपना आत्मविश्वास कैसे जागृत होगा? वर्णी जी के जीवन में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था। जैन तो नहीं थे लेकिन जैन धर्म के व्रत नियम स्वीकार किए थे। सो शिखर जी की वंदना करने गए, 7 प्रतिमा जब ले ली थी, सो शिखर जी की वंदना ऐसी नहीं करी कि पानी पियत गए, बिस्कुट खात गए, चाय पियत गए, जूता चप्पल पहने तो पहने हैं, कोई बात नहीं, और अब तो बन गई है बढ़िया से रोड, 100 पैसे चले गए। ले भैया, पाप कार्यों से निवृत्त होकर के और फिर वंदना का सुख, वंदना का आनंद लिया जाता था। अपन तो वंदना क्या कर रहे हैं, वंदना का सिर्फ बाह्य में एक दिखावा कर रहे हैं कि मैं भी शिखर जी की वंदना करके आया। अकारी से तो निवृत्त ही नहीं हुआ मैं, मैंने कहां वंदना करी, ऐसा विचार मेरे भीतर आता ही नहीं। जो आकारी थे उनको तो मैंने उस दौरान भी किया है, तो फिर मैंने वंदना कहां करी। तीर्थ वंदना के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि वो व्यक्ति तीर्थ वंदना करता है जो कि पाप कार्यों से जितनी देर को मुक्त रहता है, वही उसकी तीर्थ वंदना। मैंने तो तीर्थ वंदना करते समय भी संसार के ही कार्य किए, खाना पीना सोना सब कुछ किया। वर्णी जी ने ऐसी तीर्थ यात्रा नहीं करी, अत्यंत श्रद्धा के साथ 36 मील की जो नीमिया घाट से यात्रा होती थी पूरे पर्वत की, वो यात्रा होती थी दो दिन में। निर्जल उपवास करके उन्होंने वो यात्रा प्रारंभ की, और दूसरे दिन जब वो यात्रा समाप्त होने में थोड़ा सा और समय था, लेकिन पानी की वेदना बहुत अधिक उनको सताने लगी। जो लोग भी साथ में थे सबका भी बेहाल हो गए, वो सब प्यास की वजह से, और धूप बहुत कड़ी हो गई। अब पहुंचना मधुबन तक बहुत कठिन लगने लगा कि शायद प्राण यही निकल जाएंगे इस यात्रा में। सो वर्णी जी ने धीरे से मन ही मन भगवान का स्मरण किया और कहा कि भगवान हमारे तो आपके प्रति श्रद्धा भाव हैं, सो अगर हम प्यास से हमारे प्राण भी निकल गए, सो हमारे तो कचूने बिगाड़े, हम तो स्वर्ग जे हैं। कैसे श्रद्धा है आपके प्रति, मनो आपकी कितनी बदनामी हुई है। देखो कि एक आदमी बंद ना कर भी आओ तो बंद नहीं करत करत मरगम, अब जो हुई है बदनामी आपकी कि नहीं। तो भगवान अब आप खंजो कजु घन्ने हो सो आप करो, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तो धर्म की हंसी ना हो जाए इस बात की चिंता है। ऐसा विचार उनके मन में आया, चार कदम ही चले और उनके परिणामों की निर्मलता से, मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कह रहा हूं, उनके परिणामों की निर्मलता से चार कदम जाने पर ही एक गड्ढा जिसमें कि पानी बहुत मात्रा में था उन्हें दिखाई पड़ गया, जिसमें से निकल रहा था पानी। सो निकलने वाले स्रोत पर छन्ना लगा करके उन्होंने शुद्ध जल ग्रहण कर लिया और संतुष्ट हो गए कि अब तो यात्रा आसानी से हो जाएगी, पहुंच ही गए अपन। और थोड़ी दूर आगे चले तो बाकी सब लोग कहने लगे कि वर्णी जी बड़ी प्यास लगी है, चल ही नहीं जा रहा। ये भैया घबराओ ने, हम तो अब भाई पानी पी के आए, चलो तुम भी, हम पियाएंगे तब भाई। सो उन सबको लेकर के वापस पीछे लौटे, वहां कहां गड्ढा, वहां कहां पानी, कुछ भी नहीं था। वो तो परिणामों की निर्मलता का प्रभाव था कि वर्णी जी को उपकार कर दिया किसी ने और जल उपलब्ध करा दिया, लेकिन बाकी सबके लिए तो ऐसे ही रहना पड़ा। बताइए इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है कि मेरे भीतर आत्मविश्वास होगा तो मैं बड़े से बड़े काम भी आसान कर सकता हूं। और आत्मविश्वास कैसे आएगा, कितना कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरे तो आपके प्रति श्रद्धा है, सो अगर प्राण भी निकल जाएंगे तो कुछ बिगाड़ नहीं होने वाला। लेकिन धर्म की हंसी ने हो जावे कि देखो यात्रा खो गए थे और प्राणांत हो गया। भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा है और अंतरंग में परिणामों में निर्मलता और विश्वास है। ये सारी चीजें अगर अपने भीतर भी आ जाएं, आ सकती हैं, अपन अभ्यास करें पाने का प्रयत्न करें, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना शेष जीवन अच्छा नहीं बना सकते। हम प्रयत्न करके अपने शेष जीवन को और अच्छे ढंग से जीने के लिए बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आचार्य विवर ज्ञान विद्यासागर जी महाराज की, नहीं तो चलो अपन भोजन करें। अब बताओ, कोई रिएक्शन नहीं किया उन्होंने इतने सुख के अवसर पर भी, तो थोड़ा तो उसको लगा कि ठीक सुना था सेठ जी के बारे में कि बड़े समता परिणाम है। लेकिन अभी मन में वैसा विश्वास जमा नहीं। कुछ दिनों के बाद ऐसा अवसर आया कि सेठ जी को लंबा चौड़ा घाटा अपने व्यापार में लग गया। अब इसके मन में आया कि अब देखें, अब तो सेठ जी भले ही खुश नहीं हुए थे पहले, अब तो दुखी होंगे जब इतना घाटा लग गया तो। सो भागा भागा सेठ जी को कबर देने पहुंच गया कि सेठ जी बर्बाद हो गए अपन तो, ऐसो हो गए सब लुट गए और बहुत घाटा लग गया। सो सेठ जी चुपचाप सुनते रहे। सब रो धो करके जैसे उसने अपना दुख प्रकट करना था दुख प्रकट करके और सेठ जी को सारी बात बताई, पर सेठ जी के चेहरे पर वैसी ही भाव वैसी ही प्रसन्नता, चेहरे पर कोई झुर्रियां तक नहीं आई उनकी, दंग रह गया वो। और सेठ जी ने इतना और कह दिया जैसे पहले कहा था कि तुमने भोजन कर लिया हो तो ठीक, नहीं तो चलो अपन भोजन कर लेंगे, भोजन का समय हो गया। ऐसा सुनते ही साथ वो सेठ जी के चरणों में गिर गया कि जिसने कहा था आप तो उससे दो कदम आगे निकले, आपकी प्रशंसा वास्तव में लोग करते हैं सो ठीक ही है। पैसे वाले हैं सेठ जी, इसकी प्रशंसा तो बहुत लोग करते हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन आपके अंदर बड़प्पन अपने समता भाव की वजह से है, धन पैसे इत्यादि से नहीं है। आप समृद्ध हैं अपनी आत्मा में, लोग तो धन पैसा से समृद्ध हैं, वास्तव में आत्मा में समृद्ध होना सिखाती है सामायिक। हमें अपने आत्मा के वितराग स्वभाव की दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। हम तीन चीजें सामायिक में विचार करें, अपने बारे में विशेष रूप से विचार करें कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, और आत्मा का स्वभाव वास्तव में है कैसा। जब आत्मा का स्वभाव देखूंगा तो पर्याय पर दृष्टि नहीं जाएगी, और जितना संक्रेश होता है वो पर्याय बुद्धि से ही होता है। जैसे ही व्यक्ति का रूप बाहरी दिखा और हर्ष विषाद होना शुरू हो गया, अगर शत्रु है तो उससे विषाद होगा और अगर मित्र दिख गया तो हर्षित हो जाएंगे। लेकिन जीव देख पाए आप? आपने तो शरीर देखा, जीव तो दिखाई ही नहीं पड़ा। सो जो अपने आत्मा के स्वभाव को स्वयं के और दूसरे के देखता है, जिसको अपन द्रव्य दृष्टि कहते हैं, अगर ऐसा निर्मित हो जाए अपने भीतर भी भाव, तो ये सब दूसरे के प्रति द्वेष भाव कलह के भाव आपो आप अपने भीतर से उठना बंद हो जाएंगे। अगर इस तरह अपने ही आत्मा के स्वभाव नहीं, दूसरे के भीतर भी जो आत्मा है उसमें भी ऐसा ही स्वभाव है, तो दूसरे के अवगुण देखने का मन नहीं होगा। फिर दूसरा भी जीव आत्मा है, उसके अंदर भी वीतरागता और अनंत गुण पड़े हुए हैं, मैं गुणों की तरफ देखूं? अभी तो मैं अवगुणों की तरफ ही देखता हूं। सामायिक मुझे गुणों की तरफ देखने की शिक्षा देती है। जो व्यक्ति सामायिक करता है वो दूसरे के अवगुण देखने की कोशिश नहीं करेगा, देख लो आप। वरना तो वर्षों सामायिक करते हैं लोग, लेकिन दूसरे के दोष देखने में बड़े माहिर। विचार करो, ऐसा अपना खोटा स्वभाव बन गया है, क्या करें, संस्कार बस हो गया, या कि अपने पुरुषार्थ की कमी कहें या अज्ञानता कहें, कि मैं बाहर से सामायिक का इंतजाम तो कर लेता हूं, लेकिन उस सामायिक करने से मेरे भीतर अवगुण देखने की दृष्टि गई है या नहीं गई है, मैंने गुणों की तरफ अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास किया है नहीं किया है, ये अपन नहीं देख पाते। देखना चाहिए, तभी सामायिक सार्थक कहलाएगी। और दूसरी चीज कि अपन देखें कि प्रगति किसमें है। लेकिन आज वर्तमान में तो भौतिक रूप से संपन्न होना इसी को प्रगति मानते हैं, भौतिक उपलब्धियों को ही प्रगति मानते हैं। वास्तव में तो प्रगति वो है जिसमें कि मैं अपने जीवन को औरों के काम में ला सकूं, अपने जीवन का भी कल्याण कर सकूं और मेरे माध्यम से जीवों का भी कल्याण हो सके, ऐसे स्वपर कल्याण में ही प्रगति है। लेकिन थोड़ी सी चीजें मेरे पास इकट्ठी हो जाती हैं तो मेरा अज्ञान यह कहता है कि देखो मेरे पास इतनी सामग्री है, भैया वो सामग्री क्या अपने और दूसरे के कल्याण में सहायक है या थोड़े से भौतिक सुख देने वाली है, ऐसा थोड़ा सा विचार करें। किसी भी चीज की प्रसन्नता अपन उसकी उपयोगिता से करते हैं। कपड़ा तब तक उपयोगी है जब तक कि अपने काम आता है। कोई भी वस्तु हो वो हमारे जब तक उपयोग में आती है सो हम उसे उपयोगी मानते हैं, वरना फिर वो व्यर्थ हो जाती है और उसे फेंकने का मन हो जाता है। भैया अपने जीवन के बारे में देखें कि कितनों जीवन अपनों अपने काम में आओ और कितनों दूसरे के काम में आओ, कि आओ है कि नहीं आओ, फेंक भी लायक होगा जा बताओ। अपन कपड़े के बारे में तो विचार करते हैं लेकिन जीवन के बारे में ही वैसा विचार करें कि मेरा जीवन मेरे कल्याण के काम में आया या दूसरे का उससे कल्याण हुआ या नहीं हुआ। अगर उपयोग मैंने जीवन का ठीक ठीक नहीं किया है तो जीवन निरर्थक हो गया। ऐसा अपन जीवन के बारे में विचार करें। एक नाम तो याद नहीं है, कहीं के राष्ट्रपति थे, सो एक बार रास्ते से चले जा रहे थे, एक व्यक्ति मजदूरों का हेड होगा सो मजदूरों से काम करवा रहा था और मजदूर बोझा उठा उठा करके ट्रक पर लाद रहे थे। एक मजदूर थक गया, कमजोर तो था ही, उसने बोझा उठाया लेकिन गिर गया, उसने फिर प्रयास किया फिर गिर गया, उससे उठता ही नहीं था और वो जो मजदूरों का हेड था वो उसे बार बार कह रहा था जैसे के गाड़ी में जुता हुआ बैल नहीं चलता तो उसको चाबुक मारते हैं। विचार करना, वो तो पशु है लेकिन अपन भी मनुष्य के साथ जिसके भीतर शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की सामर्थ्य और अनंत गुण विद्यमान है उसके साथ अपन क्या व्यवहार करते हैं। सो ऐसा ही उसने बार बार उससे कहा कि काम करो, उठ नहीं रहा तुमसे उठाओ और रखो, लेकिन मदद का भाव क्षण भर भी नहीं आया और वो बार बार असफल होता है, सामान गिर जाता है, लाद नहीं पड़ पाता है, सो उसको सैकड़ों अपशब्द सुनने पड़ते हैं। वो सब अपशब्द सुन रहा था, उतने में ही वहां से गुजरे वो जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी सुन लिया, देखा स्थिति तो हट्टा कट्टा व्यक्ति जो कि उन मजदूरों का हेड था वो हाथ बांधे बढ़िया से खड़ा है और काम करवा रहा है मजदूरों से, एक चीज, और वो बेचारा मजदूर दीनहीन बोझा नहीं उठा पाने की वजह से अपशब्द सुन रहा है। उन्हें बड़ी दया आ गई और उस मजदूर के पास जाकर के उसके सिर पर उठा करके बोझा रख दिया कि भाई तुम अपना बोझा ट्रक में लाद दो जिसके लिए तुम्हें इतने अपशब्द सुनना पड़ रहे हैं, और जाकर के उस सुपरवाइजर के पास में जो कि उन मजदूरों का हेड था, कहा अपना नाम बता करके कि मैं देश का, ये मेरा नाम है, मैं राष्ट्रपति हूं, जब कभी सहयोग की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना। पानी पानी हो गया वो कि देखो इतने बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति और मजदूर की मदद करने तैयार है और मैं खड़ा हुआ हूं हाथ बांधे देख रहा हूं सामने सामने कि मेरे जीवन का क्या उपयोग है जो कि दूसरे के काम आ सकता था और नहीं आया। दूसरे का कल्याण मेरे जीवन से होवे और मेरा स्वयं का कल्याण होवे, ऐसी दृष्टि अगर अपने भीतर है तो अपन ने सामायिक करी और सामायिक को लाभ ले लो, और नहीं तो ऐसी तो बहुत अपन ने सामायिक करी है सुबह दोपहर शाम, मगर उनसे अभी तक अपन लाभ नहीं ले पाए। और तीसरी चीज, अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करना, जानना कि संसार की भौतिक चीजों की सीमा कितनी है, मेरी अपनी आवश्यकता कितनी है, अपनी सीमा पहचानना और भौतिक सुखों की संसार की सीमा पहचानना, और दोनों की सीमा पहचान करके असीम मोक्ष सुख को पाने की निरंतर लालसा रखना। मोक्ष सुख तो असीम है, ये संसार के भौतिक सुख तो सीमित हैं, और मेरी सामर्थ्य समस्त भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा तो मेरे भीतर है, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं समस्त पंचेंद्रिय और मन के विषयों को भोगने के लायक उतना सामर्थ्यवान ही नहीं हूं। अपन इस चीज का विचार करें तो धीरे धीरे अपनी इच्छाएं कमती होंगी। अनंत इच्छाएं अपन संसार में करते रहते हैं अपनी शक्ति का बिना विचार किए, और भौतिक पदार्थों में कितनी सामर्थ्य है उनकी भी सीमा है, और मेरी अपनी सामर्थ्य की भी सीमा है। इन दोनों का विचार करके और अपनी इच्छाओं को जो कि संसार में भटकाने वाली हैं, अपन साधना के द्वारा निरंतर इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। सामायिक से तो यही बातें अपन को सीखने की हैं भैया, सामायिक कैसे करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे आपके कब करना चाहिए, ये तो अपन सब सीखते हैं, लेकिन सामायिक से मुझे लाभ क्या लेना चाहिए, मेरे जीवन में लाभ कितना मिला कि नहीं मिला, इस बात का विचार अपन करते नहीं है, करना चाहिए। और निरंतर ऐसे समता भाव की अपन को आराधना और साधना करने के लिए मुनि महाराज जी जैसे समता की साधना करते हैं वैसी इस शिक्षा व्रत के द्वारा शावक को घर गृहस्थी में रहते हुए भी और प्रेरणा लेनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब जाकर के अपन अपने जीवन को जैसा अच्छा अपन बनाना चाहते हैं वैसा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ कि भैया अपन अपने जीवन को और अच्छा बना सकें, सामायिक अच्छे से करें। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ, हो अर्धि निशाता सन्नाटा मन में वन चारी चरते हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर कर तन वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की गड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया
करते हो शम की अविनश्वर मलिया।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम।
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कंश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज मगम जज।
ओम रीम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य निर्पुआ में तीन स्वाहा।
मिथ्या तम नास वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सेवकानी है।
द्रव्य जान वेको मंदे विधे भान वेको स्वपरे पिछान वेको परम प्रमाणी है।
अनुभवताय वे को जीवों के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दू। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रहन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।